विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। उर्दू साहित्य में गज़ल का बहुत बड़ा महत्व है। जब हम गज़ल सुनते हैं या उसमें से जो शब्द रहते हैं, जो अल्फाज रहते हैं, उनमें उर्दू साहित्य की खुशबू आती है और ऐसा लगता है कि ये गज़ल इतनी अच्छी लगती है सुनने में, उसमें जो शब्द है वो इतने दिल को छू जाते हैं, तो क्यों ना हम गज़ल के बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल करें। तो यह सोच के आज हमने डॉक्टर सैयद जाकिर अली साहब को एक बार फिर आमंत्रित किया हुआ है और मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि गज़ल जो है वो डॉक्टर साहब की यानी बहुत अच्छी लगती है उनको, उनका बहुत बड़ा अभ्यास है उस बारे में, और जिस तरह गज़ल एक नज़ाकत से पेश की जाती है उस तरह डॉक्टर साहब गज़ल के बारे में जानकारी भी देते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके बारे में डॉक्टर अली से ही ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपके लिए हासिल करूं, और मैं डॉक्टर साहब से मैंने विनती की कि सर आज कृपा करके हमारे बच्चों को गज़ल के बारे में ज़रा बताइए। तो मैं डॉक्टर साहब के पास सीधा जाता हूँ और आपसे गज़ल के बारे में उनसे जानकारी प्राप्त करूँगा। नमस्ते सर।
नमस्ते सर।
सर एक बार फिर आपका स्वागत है।
थैंक यू सर।
और जैसे कि मैं बहुत स्वार्थी होते जा रहा हूँ, मैंने एक से एक जानकारी आपसे हासिल की और मेरा मकसद यही है कि जो बच्चों अपने उर्दू पढ़ रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इस बारे में मिले, और वो जानकारी भी इस तरह की मिले कि केवल किताब ही नहीं, उसके अंदर जो इन्हें जिस तरह गज़ल दिल को छू जाती है, उस तरह के जो अल्फाज है, जो शब्द है, जो आपके विचारों में हमें मिलते हैं, उसके माध्यम से गज़ल के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। तो मेरा पहला सवाल मेरे मन में यही उठता है कि गज़ल और उर्दू साहित्य का क्या नाता है और गज़ल का मतलब क्या है?
सर, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखिए, गज़ल के बारे में जितना भी कहा जाए, मैं समझता हूँ कि वो कम है और चंद शब्दों में या चंद अल्फाज में उनका यहाँ बयान कर देना मुमकिन भी नहीं है। लेकिन बहरहाल, गज़ल और उर्दू, हालांकि उर्दू सिर्फ गज़ल है ऐसा भी नहीं है, लेकिन गज़ल के ज़रिए से उर्दू ने अपना बहुत बड़ा काम निकाला है, अपने मैसेज बहुत दूर दूर तक पहुंचाए हैं। दरअसल गज़ल की, पहले मैं आपसे यह अर्ज़ करता चलूं सर, कि गज़ल जो लफ्ज़ है वो लफ्ज़ गज़ाल से बना। एक गज़ाल कहते हैं हिरन को,
हिरन को, अच्छा,
हिरन जंगल के सबसे खूबसूरत जानवरों में से एक जानवर होता है। उसकी एक खूबी ये होती है कि वो चंचल होता है और उसकी आंखें बड़ी बड़ी होती हैं, नाजुक होता है, और ज़रा सी आहट पाकर वो चौकड़ियां भरता हुआ जो है वो, तो ये तमाम खूबियां जो हैं वो कहीं ना कहीं नज़ाकत का, हुस्न का पैगाम देती हैं। तो उसी लफ्ज़ से गज़ल, गज़ाल से गज़ल बना है। और चूंकि जब गज़ल शुरू हुई तो ये फ़ारसी से हमारे यहाँ उर्दू में आई, और फ़ारसी में आम तौर पर जो मज़मून जो उसके यानी जो बांधा जाता था, तो उसमें हुस्न था, इश्क था, शराब थी, शबाब था, महबूब से शिकवे शिकायतें थीं, यही सब चीज़ें थीं। जाहिर सी बात है कि उर्दू में जब गज़ल आई तो इसमें भी वही सब सारे मौजूआत जो थे, ये सारे उन्वान इसमें भी शामिल रहे। मीर की गज़लें उठा के देख लीजिए, और या मीर के ज़माने के दीगर शायरों को देख लीजिए, उनसे पहले जो वली दखनी, सिराज औरंगाबादी वगैरह जितने भी शायर थे, अगर आप उनको देखेंगे, असगर गोंडवी, मीर ख्वाजा मीर दर्द वगैरह, इस एक ज़माने तक के यही मौजूआत रहे, हुस्न और इश्क। गालिब के यहाँ भी आई तो गज़ल रही अपनी असल सूरत में ही, लेकिन गालिब ने उसमें फ़लसफ़ा, तसव्वुफ़ और इस किस्म और ज़िंदगी के कुछ अपनी ज़िंदगी की अक्कासी, गालिब ने अपनी ज़िंदगी की अक्कासी पर भी उसमें इशारे किनारे किए हैं। तो इस तरह से गज़ल जो थी वो उर्दू शायरी के अंदर दाखिल हुई और देखते ही देखते अपनी कुछ खसूसियात की, कुछ वैसी विशेषताएं, कुछ ऐसी खूबियां उसके अंदर थीं कि जिसकी वजह से गज़ल ने अपना मकाम सबसे ऊपर उर्दू शायरी के अंदर बनाया। देखिए, शायरी में कसीदा भी होता है जिसमें किसी की सिर्फ तारीफ की जाती है, किसी बादशाह की, किसी अमीर या रईस की। उसी तरह मरसिया होता है जो किसी मरने वाले की खूबियां जिसमें बयान की जाती हैं, या मसनवी होती है जिसमें अपन दास्तान पे जिस पे हमने बात की पहले एक प्रोग्राम में। तो ऐसे ही किस्म के किस्से जो होते हैं वो नज़्म की सूरत में, शायरी की सूरत में बयान किए जाते हैं जिसको हम मसनवी कहते हैं। लेकिन गज़ल ही एक ऐसी सिन्फ़े शायरी है जिसको हमारे एक सीनियर प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी, बड़े लिखने वाले थे, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, उन्होंने गज़ल को उर्दू शायरी की आबरू कहा है। और वाकई गज़ल उर्दू शायरी की आबरू ही है क्योंकि गज़ल के हर एक शेर का, एक शेर का दूसरे शेर से कोई ताल्लुक नहीं होता। किसी शेर के अंदर अगर शायर महबूब की तारीफ कर रहा है तो किसी दूसरे शेर के अंदर वो अपनी ज़िंदगी के मसाइल पेश कर सकता है, तीसरे शेर में वो दोस्तों की शिकवे शिकायतें कर सकता है। तो इस तरह से गज़ल का हर शेर अपनी जगह एक अलग होता है और यही वजह है कि हर आदमी को अपने मतलब का कुछ ना कुछ वहाँ से मिल ही जाता है। एक साहब को मैं जानता हूँ, एक मरतबा मुझसे मिले और वो रहते दूर थे इसलिए मैंने उनसे सलाम किया, बुज़ुर्ग आदमी थे, और मैंने कहा कि चाचा कैसे हो, तो कहा कि क्या पूछते हो हाल दिले बेकरार का, अच्छे हैं और शुक्र है परवरदिगार का।
क्या बात है।
तो मैंने कहा आज यहाँ पर आप कैसे, आपको देखकर बड़ा ताज्जुब हो रहा है, क्यों किस कैसे आ गए थे आज? तो कहा भाई एक ज़रूरत खींच लाई थी। मैंने कहा फिर हो गया काम? तो कहा नहीं। मैंने कहा क्यों? तो कहा झूठी तसल्लियों के सिवा कुछ ना मिल सका, मैं जाके लौट आया हर एक मेहरबान के पास।
क्या बात है।
तो ये वो चीज़ थी जो गज़ल के अंदर से निकाली हुई एक एक चीज़ होती है। तो हर इंसान को अपनी ज़रूरत का कोई ना कोई शेर उसमें मिल जाता है। तो इस एतबार से गज़ल जो है वो उर्दू शायरी में सबसे अलग हैसियत अपनी बनाकर बैठी है।
सर, जैसे कि अभी आपने कहा कि गजल का ये उर्दू साहित्य की आबरू है,
जी
जो शेर अभी आपने बताए, जिस साहब ने वो कहे, तो मानवीय स्वभाव, ह्यूमन नेचर और नेचर, इनका बहुत सम्मिलन, या हम कॉम्बिनेशन बोलते हैं अंग्रेजी में, इनका एक अलग कॉम्बिनेशन गजल में होता है। तो नेचर और ह्यूमन नेचर का ये जो कॉम्बिनेशन है, इसके ऐसे कई शब्द हैं गजल में कि जो आज भी दिल को बहुत छू जाते हैं, जैसे सागर है, आकाश के लिए है, पानी के लिए है, गहराई है। तो ऐसे कौन कौन से शब्द हैं कि जो अपने पर्यावरण से या ह्यूमन नेचर से गजलकारों ने लिए हैं और उनको बड़े अच्छे ढंग से पेश किया हुआ है, कि वो ह्यूमन नेचर पेश करते हैं अपने सामने। तो ऐसे कुछ शब्द हमारे स्टूडेंट्स को बताइए कि जो अपने जिंदगी में हम हर रोज देखते हैं, लेकिन ये सोच भी नहीं सकते कि इस शब्द का इस तरह से प्रयोग किया गया है और इसको ये नया अर्थ मिला है। तो ऐसे कुछ शब्द अगर आप बताएं तो अच्छा होगा हमारे स्टूडेंट।
देखिए, हालांकि ऐसे लफ्ज़ों से हमारी उर्दू शायरी भरी पड़ी है, कहीं ना कहीं जब हम किसी भी गज़ल को उठा के पढ़ते हैं तो कोई ना कोई एकाध शेर ऐसा मिल ही जाता है जो हमको हमारे आसपास के माहौल से यानी मुतारिफ कराता है, परिचित कराता है, या जिसको हम बोलते हैं लेकिन उसने, शायर ने उसको कुछ अलग मानी जो है वो पहनाए हैं। अब देखिए, कहते हैं कि एक शायर कहता है कि मजा बरसात का चाहो तो इन आंखों में आ बैठो, मजा बरसात का चाहो तो इन आंखों में आ बैठो, वो बरसों में बरसती है, ये बरसों से बरसती है।
क्या बात है।
तो ये चीज इस तरह से, और बेशुमार ऐसे आपको मिसालें हमारे यहाँ पर मिल जाएंगी, और मैं अभी जैसे याद आएंगे तो मैं आपको सुनाऊंगा उसके अंदर, कि जो हमारे शायरों ने जिसको एक अलग, जैसे अल्लामा इकबाल हैं, कहते हैं, ए अहले नज़र, ज़ौक़े नज़र खूब है लेकिन जो शय की हकीकत को ना देखे वो नज़र क्या। तो हमको बहुत सारी अच्छी उसमें मिसालें देखने को मिल सकती हैं, और इससे हमारी पूरी उर्दू शायरी जो है वो बाकायदा भरी पड़ी है। जब क्या थे, एक शायर ने कहा कि जैसे पुराने ज़माने में वो कहा था ना कि आसमान गर्दिश करता है यानी घूमता है, और ज़मीन अपनी जगह कांस्टेंट है, लेकिन जैसे जैसे ज़मीन, जैसे जैसे साइंस हमारे ज़िंदगी में आया तो ये फ़लसफ़ा आया सामने कि ज़मीन घूमती है, आसमान नहीं घूमता, सूरज अपनी जगह है।
अपनी जगह
तो अब शायर ने इसी बात को अपने अंदाज में यूँ पेश किया कि उस ज़माने में आदमी बहुत खुश था, आज परेशान है। तो शायर ने उसको यूँ बांधा कि आसमां गर्दिश में था जब पुरसुकू था आदमी, आसमां गर्दिश में था जब पुरसुकू था आदमी, जब से घूमी है जमी हर आदमी चक्कर में है।
चक्कर में क्या
तो
बात है।
इस तरह के बहुत सारे हमको ये चीज़ें मिलेंगी जिसमें उर्दू शायरी जो है वो भरी पड़ी है।
सर जैसे कि अभी आपने कहा कि हर एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण होता है,
जी
लेकिन वो जो नज़रिया है जिस नज़र से वो देखना चाहिए उसके लिए कुछ खास क्वालिटीज़, कुछ खास गुण हम में चाहिए जो एक शायर में होते हैं। तो जो शायर लोग होते हैं या जो शायरी करते हैं या अपने शौक के लिए लिखते हैं, भले उनको पब्लिसिटी या प्रसिद्धि ना मिली हो, तो उनमें क्या क्या ऐसी कौशल्य या गुण या क्वालिटीज होती है कि जिस कारण वो इतना अच्छी तरह से या अलग नजरिए से, औरों से ज्यादा अलग नजरिए से देख सकते हैं, इसके बारे में जरा बताइए।
सर देखिए, एक तो ये बात बहुत मशहूर है कि शायर बनता नहीं, वो बना दिए वहाँ से भेजा जाता है।
भेजा जाता
यानी इन शायरी की जो क्वालिटीज़ हैं तो वो ना तो हमको किताबें पढ़ने से आ सकती हैं और ना ही कुछ किसी और उसका कोई स्रोत या कोई माध्यम या कोई जरिया है, बल्कि ये एक कुदरती देन है। मुझको शायर न कहो मीर के साहब, मैंने रंजो गम कितने किए जमा तो दीवान हुआ। तो ये चीज़ तो शायर को कुदरत से मिलती है। अलबत्ता एक बात ज़रूर है कि हर चीज़ के हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ तो खोना ही पड़ता है, और हमारे यहाँ पर जो शोरा ने, जो शायरों ने, जो उनमें क्वालिटीज थी छोटी मोटी, उसको उन्होंने पहचाना कहीं ना कहीं और उस पर मेहनत की, और उस पर मेहनत करने के लिए उन्होंने अच्छे शोरा के, अच्छे शायरों के कलाम पढ़े, मुशायरों में गए, उस्तादों के पैर दबाए। तो यूं ही चल के नहीं, ये मशक़े सुखन आया है। मशक़े सुखन कहते हैं शायरी को। एक शायर कहते हैं कि यूं ही चल के नहीं, ये मशक़े सुखन आया है, पांव दावे हैं बुजुर्गों के तो फन आया है। तो ये चीज़ तो उस वक्त तो आती है जब इंसान को उसकी जस्तजू होती है, और उसके अंदर बहुत मामूली क्वालिटी भी अगर है लेकिन अगर वो मेहनत करे उस पर, तो कहीं ना कहीं उसकी वो खूबी जो है वो निखर जाती है। जैसे कोई पत्थर की मूर्ति, पत्थर तो है वो लेकिन उसको तराशने के लिए फिर मेहनत की ज़रूरत होती है, तो उसके अंदर का शायर जो है कैसे निखरे, बाहर कैसे आए। तो उसके लिए फिर अच्छी, अच्छे शायरों का कलाम पढ़ना, सुनना और उसको याद करना, तो जब ये अगर करता है तो उसको कहीं ना कहीं ये चीज़ उसके अंदर पैदा होती है।
सर शुरुआत में आपने गालिब का जिक्र किया,
जी जी
तो गालिब और शायरी
जी जी
इनका जो नाता है
जी जी
वो बहुत ही प्रसिद्ध है। तो गालिब की जो शायरी है इसके बारे में जरा हमको बताइए।
सर देखिए, गालिब के यहाँ पर फलसफा, बड़ा गहरा फलसफा। कुछ बातें तो गालिब ने इतने ऐसे अंदाज में कही। गालिब की बहुत सारी खूबियां थी सर। ये खूबी मैं आपको बताता हूँ, मुझे हालांकि किसी ने उसको हास्य व्यंग के अंदाज में लिखा है, लेकिन एक बात है कि गालिब में बहुत सारी खूबियां थी। एक खूबी गालिब की ये भी थी कि गालिब बिस्तर पे पड़े रहते थे। जब उनको कोई शेर याद आता था तो वो अपना कमरबंद में एक गांठ बांध लेते थे, पायजामे का कमरबंद में एक गांठ बांध लिए, और ऐसा समझते थे कि वो नोट हो गया। उसके बाद में जितने शेर याद आते जाते थे, हर एक शेर पर एक गांठ बांधते थे वो, 5, 10, 20 जितनी भी होते वो हो जाता था। सुबह जब उठते थे अपने तमाम ज़रूरतों से फारिग होकर, फ्रेश होकर, फिर वो वहाँ आके दोस्तों बैठते थे, अपने दावत और उनका कलम निकाल कर बैठते थे, फिर वो एक एक गांठ खोलते जाते थे और शेर लिखते जाते थे।
क्या बात है।
ये गालिब की एक क्वालिटी थी, और ये कोई यानी हवा में बात नहीं है, बल्कि इसकी बहुत सारी सनदें जो मौजूद हैं, इसका ये सच्चाई है ये। दूसरी गालिब की जो शायरी की हम बात कर रहे हैं, बड़ी गहराई के साथ। हालांकि अल्लामा इकबाल जैसा शायर, जिसके बारे में पूरी उर्दू दुनिया जिनको मानती है, बड़ा शायर था, फलसफी था, डॉक्टरेट का किया था लंदन से, प्रोफेसर थे, पॉलिटिशियन थे, बहुत बड़ा आलिम, फाजिल अल्लामा जिसको कहते हैं। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि गालिब के फलसफे के ताल्लुक से आप क्या कह सकते हैं, तो उन्होंने क्या जुमला कहा, जबकि गालिब कोई फलसफी नहीं थे, फिलासफर नहीं थे, लेकिन उनका ये जुमला था कि गालिब के फलसफे को मैं छू भी नहीं सकता। अब जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ। न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। अब देखिए, सुनने में आदमी ये सोचता है कि इसका मतलब ये है कि कुछ नहीं था तो खुदा था,
बिल्कुल
कुछ ना होता तो भी खुदा होता ही, वो तो था और है और हमेशा रहेगा। डूबो या मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता, यानी मैं इसलिए डूब रहा हूं कि मैं हूं,
मैं हूं
अगर मैं नहीं बनाया जाता
तो
तो
क्यों
क्या हो
डूबू।
जाता। लेकिन गालिब ये नहीं कह रहा है, गालिब ये कहना चाह रहा है कि जो इंसान बनाया है, जो पूरी दुनिया को बनाया है, ये अल्लाह ने अपने प्रकाश से, अपने नूर से बनाया है, अपने नूर से बनाया है, उसका एक अंग है, और इस पूरी पूरी दुनिया उससे जिंदगी पा रही है। जिस तरह एक समुंदर से, दरिया से कतरा ले लिया जाए तो वो क्या होता है, दरिया से अगर अलग हो गया तो कतरा रहता है, वापस वो कतरा अगर दरिया में मिल जाए तो क्या होगा, वो
दरिया
दरिया हो जाएगा।
हो जाए।
तो डुबोया मुझको होने ने, यानी मैं नहीं था जब तो क्या था, उसका हिस्सा, इन्हें भगवान का,
बराबर
ईश्वर का, खुदा का हिस्सा था।
बराबर
ऐसे रंज का दूसरा शेर उनका, कि न रंज का खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि आसान हो गई। इंसान दुखों का जब आदी हो जाता है तो उसके ऊपर फिर वो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। फिर वो है कि हम तक कब उनकी बज्म में आता था दौरे जाम, साकी ने कुछ मिला ना दिया हो शराब में। फिर अच्छे दिन भी जब आते हैं तो आदमी डरता है, जब इंसान को मुसीबत, आप अगर मुझसे हमेशा मुंह मोड़ते रहेंगे तो मैं आदी हो जाऊंगा, और अचानक फिर आपके दिल में ख्याल आया कि नहीं यार, अब बहुत हो गया, आप छोड़ो सर, लीजिए आप भी, तो फिर मेरे को शक होगा। हम तक कब उनकी बज्म में आता था दौरे जाम, साकी ने कुछ मिला ना दिया हो शराब
क्या बात है।
में।
सर जैसे अभी आपने जो बताया, एक मन में मेरे सवाल आता है कि क्या गजल या शायरी का खाली दर्द से वास्ता है या कुछ जीवन के प्रति जो पॉजिटिविज्म है, जो सकारात्मकता है, उससे भी शायरी दिखती है, खाली नकारात्मक जो है, जो दुख दर्द है, वही दिखती है, इसके बारे में जरूर।
शायरी ने तो आज मैं समझता हूँ कि जो शायर गजल जो रोल कर रही है वो रोल तो सर अभी मैं समझता हूँ कि पूरे लिटरेचर पर कहीं भी दूसरे किसी भी लिटरेचर के अंदर आप झांक कर देख लीजिए तो अब आपको जो है वो चीज़ नज़र आएगी कि गज़ल हमको बेदार कर रही है और गज़ल ने पहले भी किया है। 1936 में जब यहाँ पर तरक्की पसंद तहरीक हिंदुस्तान के अंदर शुरू हुई तो उस वक्त तो हमारे शायरों ने हमारी शायरी ने बहुत ज़बरदस्त यानी लोगों को सर इस बात के यानी जीने का संदेश दिया पैगाम दिया उठो मेरी दुनिया के गरीब कहीं जज्बाती होकर कहीं थोड़ा सा अपने आप से बाहर आकर कभी बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर कभी बहुत मोहब्बत के साथ कि उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो काखे उमरा के उमरा यानी रईसों के काखे उमरा के दरो दीवार हिला दो जिस खेत से दहका को मैसर न हो रोजी उस खेत के हर खोशे गंदुम को जला दो।
क्या
हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदुस्तान और चीन का था 1962 में उस वक्त पंडित नेहरू ने लोगों से मांगा था कि भाई हमारे पास में अभी कुछ नहीं है उस वक्त हालात भी हमारे देश के खराब थे तो औरतों ने अपने मंगलसूत्र तक उतार के दिए थे देखिए शायर वहां पर भी चुप नहीं रहा जिन जो कुछ नहीं दे सकते थे तो पंडित जी ने कहा कि जो जवान हैं ताकतवर हैं सेहतमंद हैं वो अपना खून दे ताकि जवानों की जान बचाई जा सके तो लोगों ने अपना नौजवानों ने अपना खून पेश किया तो एक शायर ने क्या कहा कि खून की मांग है इस देश की रक्षा के लिए मेरे नज़दीक ये कुर्बानी है छोटी दे दो
क्या बात
लेकिन अरबाब हुकूमत से भी कहना है मुझे कि जिनसे खून मांग रहे हो उन्हें रोटी दे दो।
क्या बात
इन गरीबों का लहू बह चुका बन के
है
पानी जिंदगी है कि बहर हाल जिए जाते हैं खुश्क ढांचों से निचोड़ो ना लहू की बूंदें खून लो उनसे के जो खून पिए बैठे
क्या
हैं
बात
मोदी और टाटा और बिरला के ठिकाने देखो खून ही खून है तुम इनके खजाने देखो इन खजानों में मोहब्बत का लहू पाओगे इन खजानों में मुरव्वत का लहू पाओगे किसी दोशीजा की इस्मत का लहू पाओगे किसी बेवा की जवानी का लहू पाओगे।
क्या
तुमने उन दर्द के मारों से लहू मांगा है जिनको संसार में 2 दिन कभी राहत न मिली इनके खून की कोई कीमत मिले मुमकिन ही नहीं आज तक जिनके पसीने की भी कीमत न मिली। तो
बात है,
शायर ने तो हर मौके पर
हर मौके
जीने का
पे
हौसला
लिखा
दिया है।
बराबर। सर जब गालिब जी का हम जिक्र करते हैं तब
जी
मकतूब निगारी
मक्तूब निगारी जी।
तो उसका जिक्र होना तो बहुत ही यानी स्वाभाविक है,
जी
तो
जी
इसके बारे में जरा बताइए।
हाँ सर ये असल में मैं बहुत इसमें बता दूँ कि देखिए गालिब से पहले थोड़ा सा हमको ये झांकना चाहिए कि गालिब से पहले जो उर्दू में खत लिखे जाते थे पत्र व्यवहार जो मामला होता था जो खतूत लिखे जाते थे जिसको हम मकतूब कहते हैं उर्दू में उसको मकतूब भी और खतूत भी दोनों से तो उसमें एक चीज़ तो ये थी कि फारसी का बहुत ज़्यादा उस पर हावी थी। दूसरी एक चीज़ के बड़े अलकाब व आदाब उस पर लगाए जाते ना मजमून तो जो उसका एक तरफ रह जाता था लेकिन पहले तो बहुत कुछ कहा जाता था जनाब वाली हुजूर वाला और ये सारे तो उससे लिखते तो ये बड़े यानी अदबी पैरायों के अंदर उसको लपेट कर और पेश किया जाता था। गालिब ने सबसे पहली चीज़ एक ही किया कि गालिब ने बिल्कुल उसको छोड़ दिया डायरेक्ट बस कहिए जनाब कैसे हो अब खत में तो ये तो डायरेक्ट लिखते थे वो यानी ऐसा लगता है कि जैसे गालिब अगर सामने हैं और उनके सामने जिससे वो बात कर रहे हैं जिसको खत लिख रहे हैं वो उनके सामने बैठा
सामने
हुआ है।
बैठे
तो इसके लिए एक जुमला बड़ा मशहूर भी है कि गालिब वो है जिसने मुरासले को मुकालिमा बनाया यानी जो खतो किताबत थी उसको बराह रास्त डायरेक्ट बातचीत बना दिया। तो अब उसके खतूत पढ़ने के बाद अगर आप उनके लेटर पढ़ेंगे तो उनके लेटरों में आपको डायरेक्ट मिलेंगे खत के। और अच्छा, वो ओरिजिनल खत हैं, वो ऐसा भी नहीं कि बनाकर लिखे हुए हैं, ओरिजिनल खत हैं उन्होंने, जो अपने दोस्तों को लिखे हैं, नवाबों को लिखे हैं, अपने शागिर्दों को लिखे हैं, बुजुर्गों को लिखे हैं। तो एक ये चीज़ है। दूसरी एक चीज़ के उसमें जो जबान का इस्तेमाल किया गया है, बड़ी साफ सुथरी और बड़ी प्यारी जबान है, बड़ी बेतकल्लुफ जबान है। कहीं से कहीं तक उस पर किसी और फारसी अरबी का कोई ऐसा गलबा हमको नजर नहीं आता। और यही बात है कि हम, ये कहा जाता है कि जो उर्दू प्रोज, उर्दू लिटरेचर जिसको उर्दू नस्र हम कह रहे हैं, तो मॉडर्न जो नस्र है, जदीद नस्र, तो इसकी बुनियाद गालिब के लिटरेचर खतूत से ही पड़ी है।
अच्छा
दूसरी एक और खास बात कि गालिब के खतूत जो है, उनके मकतूब जो हैं, तो उनकी जिंदगी का आईना है। यानी आपको अगर गालिब के हालात जिंदगी समझने में कहीं परेशानी जा रही हो, कहीं कंफ्यूज हो रहे हो, आप उनके लेटर पढ़ लेंगे तो आपको कहीं ना कहीं वो पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि अरे गालिब परेशान थे, गालिब का पेंशन रुका हुआ था, गालिब अपने दोस्तों से भी कहीं ना कहीं शिकवे शिकायत कर रहे थे, गालिब को समाज का और जमाने का भी कुछ शिकवा शिकायत थी। तो ये सारी चीजें आपको उनके खतूत के जरिए से, उनके लेटर्स के जरिए से मालूम हो जाएंगी। तो एक नया अंदाज, एक नया रास्ता, एक नई उड़ान जो थी, उन्होंने उर्दू लिटरेचर को अपने लेटर्स के जरिए से जो है वो दी।
यानी अपने जो व्यक्तिगत जीवन है, जो समस्या है,
जी।
जो भी कुछ क्षण आते हैं जीवन
जी
में, तो उसका जो प्रभाव है वो उनके शायरी पर या उनके गजलों पर पड़ा हुआ है।
जी
जैसे कि आपने कहा कि गालिब साहब का जो काम है वो गजल का एक फाउंडेशन है,
जी
तो मेरे मन में ये सवाल आता है कि क्या अभी जो मॉडर्न गजल है अपनी, तो उसमें आपको गालिब की क्या क्या विशेषताएं दिखाई देती है कि आगे चल के आप ये कह सके कि ये यहाँ गालिब हमको दिखाई देता है मॉडर्न गजल में, तो इसके बारे में जरूर बताइए।
नहीं, देखिए, जो क्योंकि गालिब ने एक चीज की जो बुनियाद रखी थी वो थी हकीकत पसंदी, वास्तविकता।
वास्तविकता
तो हकीकत पसंदी गालिब को अच्छी लगती थी, और वो चाहते थे कि हम किसी को ख्वाबो ख्याल की जन्नत में ना ले घुमा कर, उसकी सैर ना
बराबर
करा के, जो जिंदगी को उसका आईना दिखाएं कि तेरी
बराबर
तस्वीर ये है। तो कहीं ना कहीं उसके बाद से, गालिब के बाद से ये एक रिवायत पड़ी, ये एक रस्म, एक बुनियाद पड़ गई, और हमारे शायरों ने उसको फॉलो किया। उनके जस्ट बाद भी जो शायर आए, उसमें इकबाल जैसे लोग थे, फैज़ अहमद फैज़ जैसे, उनके बाद जो बहुत बाद में नस्ल जो आई, उसने गालिब को फॉलो किया। और आज भी बशीर बद्र जैसे बड़े शायर हिंदुस्तान के, बड़े बल्कि उर्दू के बड़े शायर हैं, तो बशीर बद्र हैं, वसीम, डॉक्टर वसीम बरेलवी है, और तो ऐसे लोग उनको, ये कुरतुल ने हैदर, बड़ी अफसाना निगार है हालांकि, लेकिन उन्होंने सराहा है। और जगह जगह कहीं ना कहीं गालिब को जो है वो लोग पेश करते हैं, कहीं उनके ख्यालात, कहीं उनका अंदाज, कहीं उनका तो वो लेकर चल रहे हैं आज
वो
भी।
लेकर चल
हाँ
रहे
जी
हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने गजल, गजल का अर्थ, गजल की जो विशेषताएं हैं और इस क्षेत्र में गालिब साहब का जो योगदान है, इसके बारे में हमने सर से जानकारी ली। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस कार्यक्रम को सुनने के बाद आपका पांचवा और सातवां जो यूनिट है, छठा जो यूनिट है गजल के बारे में, वो समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मैं एक बार फिर सर का आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने इतना समय आज हमें दिया, और जैसे जैसे मौके मिलेंगे वैसे वैसे हम सर को आमंत्रित करते रहेंगे। सर, आज आप यहाँ आए और हमारे बच्चों को गजल के बारे में, गालिब जी के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसलिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद।
थैंक यू सर, थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमको यहाँ बुलाया, ये मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सर। थैंक यू।